भाइयों बच्चों, आज 14 अगस्त 2020 का शुभ दिन आपके लिए मंगल में हो, कल्याण में हो। आप सबको भगवत प्राप्ति की ओर जाने के लिए प्रेरणादायक हो। गीता का 8वां अध्याय हमने आरम्भ किया था, जिसका आज हम 11वां श्लोक करेंगे। पीछे हमें योग्य बात है तो ये है कि भगवान समग्र रूप में कैसा है। समग्र क्या है? समग्र किसको बोलते हैं? मैं इसको फिर से दोहराऊंगी आज, इसलिए कि आपको ये याद हो जाए। ब्रह्म, अध्यात्म, कर्म, अद्भुत, अधिदैव और अधियज्ञ, ये भगवान का समग्र रूप है। कौन कौन? ब्रह्म, अध्यात्म, कर्म, अधिभूत, अधिदैव और अधियज्ञ। समग्र मीन्स होल, सारे का सारा, इससे बाहर कुछ नहीं है, यही भगवान है। तो अब इन 6 के 2 भाग किए जाते हैं। 2 विभाग इस तरह से, वो एक निर्गुण निराकार और दूसरा सगुण साकार। ब्रह्म निर्गुण निराकार प्रथम, दूसरा तत्सम अध्यात्म। इसके अंतर क्या आता है? अनंत योनियों के अनंत जीव। तीसरा अखिल कर्म, उत्पत्ति, स्थिति और प्रलय आदि की संपूर्ण क्रियाएं। ये 3 जो है, ये इसको कहते हैं ज्ञान भाग, और ये निर्गुण है। लेकिन इसके साथ जो भगवान का दूसरा है, जिसको हम सगुण कहते हैं, वो है अधिभूत। अपने शरीर से संपूर्ण 5 भौतिक जगत, जितना मेरे जगत दिखाई देता है, 5 भौतिक 5 तत्वों से बना हुआ, ये अधिभूत है। अधिदेव के मन, मन इंद्रियों के अधिष्ठात्री देवता सहित ब्रह्मा जी आदि सभी देवता, मतलब देवतागण जो है, वो अधिदेव में आते हैं। फिर तीसरा है अधियज्ञ, अंतर्यामी विष्णु कैसे भी हो, उस अधियज्ञ में आते हैं। तो 3 पहले थे 3 बाद में आ गए, है ना, समझ में आ गई ना। तो इन दोनों को मिला दें तो उसको कहते हैं समग्र रूप। पहला भाग निर्गुण का था, ज्ञान का था, दूसरा सगुण का है, विज्ञान का है। अब मैं 8वें अध्याय के अगले श्लोक को है करती हूँ, और आपको ये अवश्य याद रखना है कि भगवान का समग्र रूप क्या है। सॉरी, तो अब हम करते हैं 11वां अध्याय। यद क्षरम वेद विदो बदंती विशंति यद्यो वीतरागा यद अक्षिंतो ब्रह्मचर्यम चरंती तत्ते पदम संग्रह प्रवक्षे। गीता का 8वें अध्याय का 11वां श्लोक है। देवता लोग या वेद वेता लोग, जिसको अक्षर कहते हैं, अक्षर जो कभी क्षय नहीं होता, क्षर होता है नाशवान, अक्षर होता है अमर अजर। वेद वेता लोग जिसको अक्षर कहते हैं, वीत राग यति जिसको प्राप्त करते हैं, और साधक जिसकी प्राप्ति की इच्छा करते हुए ब्रह्मचर्य का पालन करते हैं, वह पद में तेरे लिए संक्षेप से कहूंगा। यहाँ कौन बोले हैं? स्वयं भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को। मैं आपके लिए बताऊंगा कि वो ब्रह्म जिसको हमें प्राप्त करना है, वह पद में तेरे लिए संक्षेप से कहूंगा। इसमें आप देखते हैं कि यद क्षम वेद विदो बदंती कृष्ण आश्रम और ब्रह्मचर्य आश्रम और वानप्रस्थ आश्रम और संन्यास आश्रम, ये 4 आश्रम क्यों बनाए गए हैं? क्योंकि इन सब का एक ही उद्देश्य है, परमात्म तत्व को प्राप्त करना। सर्व द्वारा संयम मनोहिद्युद्ध मोध्यात्मना प्राणम आस्थित योग धारणा। 12वां श्लोक है, वो 13वां श्लोक है। औमित्य काक्षम व्याहन मामानुस्मरण यह प्रयाति त्यजन देहम स याति परमाम गति। इंद्रियों के संपूर्ण द्वारों को रोककर मन का हृदय में निरोध करके अपने प्राणों को मस्तक में स्थापित करके योग धारण में सम्यक प्रकार से स्थित हुआ जो साधक ओम ओम इस एक अक्षर ब्रह्म का मानसिक उच्चारण और मेरा स्मरण करता हुआ शरीर को छोड़कर जाता है वह परम गति को प्राप्त होता है। श्लोक 14 अनन्य चेता सत्तम यो माम संहति नित्यशा तस्य नाम सुलवा पार्थ नित्य युक्तस्य योगिना। हे पीठानंदन अनन्य चित वाला जो मनुष्य मेरा नित्य निरंतर स्मरण करता है उस नित्य निरंतर मुझ में लगे हुए योगी के लिए मैं सुलभ हूँ अर्थात उसको सुलभता से प्राप्त हो जाता हूँ। बोले हमें क्या करना है अनन्य चेता और सत्तम अनन्य चेता मतलब किसी की चेतना नहीं रखनी किसी की याद नहीं करनी अपना मन केवल भगवान में लगा देना और वो भी लगातार सत्तम मतलब नित्य निरंतर भक्त केवल भगवान को ही अपना मानता है और सदा उन्हें अपने पास देखता है इसलिए वह नित्य निरंतर भगवान में ही लगा रहता है। उसकी दृष्टि में एक भगवान के सिवाय अन्य की सत्ता न होने से उसका मन भगवान को छोड़कर कहाँ जाए कैसे जाए क्यों जाए इसलिए वह अनन्य चित वाला हो जाता है उसे भगवान का स्मरण करना नहीं पड़ता कहते तो उसके द्वारा स्वतः भगवान का स्मरण होता है। ये चिंतन करने योग्य बात है कि जो अनन्य चेता होता है जो किसी और का ध्यान ही नहीं करता ना अपने बच्चों का ना धन का ना दौलत का तो वो क्या होता है अनन्य स्मरण करने वाला रहता है अनन्य चेता हो जाता है। तो उसमें क्या होता है कि उसको करना नहीं पड़ता जैसे हम लोगों को करना पड़ता है ना कि हनुमान चालीसा गाओ ये करो वो करो ना नथिंग केवल वो उसके द्वारा अपने आप ही भगवान का स्मरण होता रहता है। ऐसे जो मनुष्य होते हैं उनके लिए भगवान आसानी से प्राप्त हो जाता है। जिस दिन हम लोग इस बात को पकड़ लेंगे उस दिन से लेकर मृत्यु तक भगवान का स्मरण करना चाहिए और जब से नींद खुले तब से लेकर गाढ़ नींद आने तक भगवान का स्मरण करें। भगवान संपूर्ण देश काल वस्तु व्यक्ति घटना अवस्था परिस्थिति आदि में परिपूर्ण होने से प्राणी मात्र को नित्य प्राप्त। देखिए कितनी मजे की बात है कितनी इम्पोर्टेंट बात है कि भगवान तो सब जगह है इसलिए जब सब जगह है तो मुझे भी मिल सकता है आपको भी मिल सकता है सभी को मिल सकता है लेकिन पहले कंडीशन क्या लगाई थी कि नित्य चेता होना चाहिए और नित्य स्मरण होना चाहिए अतः उनके विषय में सुलभता और दुर्लभता कहना बनता ही नहीं परंतु लोगों ने उन्हें दुर्लभ मान रखा है। इस मान्यता को मिटाने के लिए भगवान यहाँ अपने को सुलभ बताते हैं। हम कहते हैं ना भगवान को पाना तो बड़ा कठिन है द्वापर युग में भी ऐसा ही होता होगा कहते होंगे लोग उससे पहले त्रेता और सतयुग में भी लोग कहते होंगे वह सब कुछ पाना आसान है भगवान को पाना इट इज वेरी डिफिकल्ट उसी ही तो उसका जवाब भगवान क्या देते हैं कि दुर्लभ नहीं भाई सुलभ है मैं मुझे मत ये बोलो कि मैं दुर्लभ हूँ मैं तो सुलभ हूँ आसानी से मिल जाता हूँ लेकिन केवल दो कंडीशन आपको दो शर्तें पूरी करनी है तो क्या क्या है कि अनन्य चेता और नित्य स्मरण। आगे है 15वां श्लोक मानो पेत्य पुनर्जन्म दुखाले शाश्वतम नाप्नुवन्ति महात्मानां संसिद्धिं परमां गति। महात्मा लोग मुझे प्राप्त करके दुखालय अर्थात दुखों के घर और अशाश्वत अर्थात नित्य निरंतर बदलने वाले पुनर्जन्म को प्राप्त नहीं होते। ये भी कितनी सुंदर बात है कि जो महात्मा है सचमुच महात्मा है जिसका मन महान है जो नित्य चेता है जो निरंतर भगवान का स्मरण करता है जो दूसरों की भलाई करता है दूसरों के लिए सोचता है उसके लिए भगवान जो है वो लोग जो हैं वो फिर से जन्म नहीं लेती है। मामों पे ते अपने जन्म दुखाले आश्वतम नापन बनती महात्मा ना सम सिद्धि पमान गति, क्योंकि जो परम सिद्धि को प्राप्त हो गए हैं उनको परम प्रेम की प्राप्ति हो गई है। परम सिद्धि का अर्थ हम लोगों को ये नहीं लेना चाहिए कि हम बड़े सिद्ध हो गए, बड़े चमत्कार कर सकते हैं, हमें सब आठ सिद्धियां नौ सिद्धियां मिली, नहीं। जब हमें भगवान से प्रेम हो जाता है पूर्ण प्रेम, तो हम अपने आप ही सिद्ध बन जाते हैं। भोग और संग्रह में लगे हुए इस काम मनुष्य के लिए तो ये संसार दुखाले है, ये तो आपको सामने ही आप जानते ही हैं कि हम तो कितना संग्रह करते हैं, भोग विलास में डूबे हुए हैं, इसलिए संसारों के लिए दुखों का घर है। पर जो लोग सेवो और भगवत भजन में लगे हुए निष्काम मनुष्य के लिए संसार भगवत स्वरूप है। परमात्म तत्व की प्राप्ति एक बार होती है और सदा के लिए हो जाती है, इसलिए परमात्मा को प्राप्त हुए मनुष्य का पुनर्जन्म नहीं होता, वह सदा सदा के लिए जन्म मरण से छूट जाता है। यदि उसमें भक्ति के संस्कार हो तो वह जन्म मरण से मुक्ति के साथ प्रतिक्षण वर्तमान परम प्रेम को भी प्राप्त कर लेता है। अगर ऐसा मनुष्य भक्त भी हो, भगवान से प्रेम भी करता हो, तो फिर क्या, फिर तो भगवान का प्रेमी ही बन जाता है। 16वां श्लोक, अभ्रम भुवना लोका पुनरावर्तनो अर्जुन मामुपेत्यतु कौन्तेया पुनर्जन्म न विद्यते। हे अर्जुन, ब्रह्म लोक तक सभी लोग पुनरावर्ति वाले हैं, मतलब आने जाने वाले, कभी जाते हैं कभी आते हैं, सभी लोग वैसे, लेकिन परंतु हे कौन्ते मुझे प्राप्त होने पर पुनर्जन्म नहीं होता। इसलिए हमारा प्रश्न रहता है, प्रत्येक मनुष्य चाहता है कि मुझे भगवान मिल जाए, उसका परम प्रेम हमें प्राप्त हो जाए, लेकिन है तो साधना करनी पड़ती है। भगवान कहते हैं जो मुझे मिल जाता है, मुझे प्राप्त कर लेता है, फिर उसको दोबारा इस संसार में जन्म मरण के चक्कर से बच जाता है। भोग और संग्रह की आसक्ति से ही पुनर्जन्म होता है। ये फिर बोल जाएगा कि जब मरती बार हमें जिससे आसक्ति होगी, चाहे वो जो सामान हमने इकट्ठा किया उससे, या अपने नाते पोतों से, या बैंक में जो धन रखा है उससे, कुछ भी कह लो, जहाँ भी अटैचमेंट होगी और जैसी भी होगी, इसमें मनुष्य की या तो भोग करने की इच्छा रह जाएगी कि ये खाना था वो पहनना था, और फिर आसक्ति हो जाती है, फिर से क्या होता है कि वो उस आसक्ति के कारण पुनः इस संसार में आता है, और आना ही पड़ता है। ऐसा नहीं है कि वो सोचे मैंने नहीं आना था, ऐसा नहीं होगा। हमें जीते जी विदेह बनना होगा। राजा जनक विदेह थे, क्यों कि वो सब कुछ करते थे, एक हाथ में कर्म की तलवार थी और एक हाथ में ज्ञान की थी, कर्म भी करते थे ज्ञान भी था, फिर लेकिन विदेह थे। ब्रह्म लोक तक सभी लोगों की प्राप्ति कर्मों का फल है। ब्रह्म लोक तक देखो क्या है, जैसे कर्म की करोगे वैसा फल पाओगे। जब प्रत्येक कर्म का आरंभ और अंत होता है तो फिर उसका फल अविनाशी कैसे होगा। कर्म की क्या गति है, कर्म की क्या नेचर है, क्या स्वभाव है कि वो आरंभ भी होता है, जो काम हमने शुरू किया वो एक दिन उसका अंत भी अवश्य होता है, चाहे सायंकाल हो, चाहे 10 घंटे बाद हो, 2 महीने बाद हो। परंतु परमात्मा की प्राप्ति कर्मों का फल नहीं है। देखो कितनी और ऊंची बात आती है कि हमके बाद हम सोचते हैं हमने इतना बड़ा काम कर दिया, हमने अध्यापन कर दिया, हमने बद्रीनाथ जाए, गंगा नहाए, है ना, गंगा सागर में, लेकिन ये तो कर्म है। भगवान कर्मों के फल से नहीं मिलता, इसलिए हमें जहाँ तक कर्म से हम जाते हैं ब्रह्म लोक तक, वहां से पुनः लौटना पड़ता है। लेकिन जिसने परमात्मा को प्राप्त कर लिया वो फिर संसार में नहीं आता है। सर्व श्लोक सहस्र युग पर्यंतम अहद ब्रह्मनो विदु रात्रि योग संतराम ते हो रात्र विदो जना, जो मनुष्य ब्रह्मा के 1000 चतुर्युगी वाले एक दिन को, 1000 चतुर्युगी वाली एक रात्रि को जानते हैं। ये सोचने सुनने की बात है कि ब्रह्मा का एक दिन एक रात्रि कितनी होती है कि हमारे जो 4 युग है, कौन कौन, ये सतयुग, त्रेता, द्वापर और कलयुग, इसको चतुर्युगी कहते हैं। जब वो 1000 बार होती है तो फिर क्या होता है, तब ब्रह्मा का एक दिन होता है। जब पुनः फिर 1000 बार होती है तो ब्रह्मा की रात्रि हो जाती है। रात्रि को क्या होता है, महाप्रलय हो जाती है, सब कुछ जल में डूब जाता है, कुछ नहीं दिखाई देता है, वो रात्रि बन जाती है। 18वां श्लोक है, अव्यक्ता अव्यक्ता सर्वा प्रभनुत्या राग में रात्यागमे पलीयन्ते तत्र अव्यक्ता संयते। ब्रह्मा के दिन के आरंभ काल में अव्यक्त अव्यक्त के ब्रह्मा का सूक्ष्म शरीर से संपूर्ण शरीर पैदा होते हैं। अब ये भी समझने वाली है कि हम कब पैदा होते हैं, हम मैं और आप नहीं, सभी जीव मनुष्य नहीं, 84 लाख योनियां कब पैदा होते हैं, जब ब्रह्मा का दिन शुरू होता है, जब ब्रह्मा उठते हैं जागते हैं तो हम सब पैदा होते हैं, और जब ब्रह्मा की रात होने लगती है तो हम सभी ब्रह्मा के सूक्ष्म शरीर में क्या होते हैं, विलीन हो जाते हैं, लीन हो जाते हैं, जिसे भी याद रखना आवश्यक है। श्लोक 19, भूत ग्रामास एवायम भूतवा भूतवा पलियते रात्यागमे अवशा पार्थ प्रभु यत्या राग में, हे पार्थ वही ये प्राणी समुदाय उत्पन्न होकर प्रकृति के परवश हुआ ब्रह्मा के दिन के समय उत्पन्न होता है और ब्रह्मा की रात्रि के समय लीन होता है। इसलिए आप सब ब्रह्मा का दिन और ब्रह्मा की रात्रि कब होती है इसे रत्न करके याद रखिए। बदलने वाले शरीर संसार का विभाग अलग है और नाम बदलने वाले आत्मा परमात्मा का विभाग अलग है। शरीर संसार तो बार बार उत्पन्न होते हैं और नष्ट होते हैं, पर आत्मा परमात्मा के बे ही रहते हैं। हम लोग मतलब जो भगवान में मिल जाते हैं वो बार बार जन्म नहीं लेते हैं, कितने ही पले महापले और सर्ग महासर्ग क्यों ना हो जाए, एक पले होती है एक महापले होती है, पले छोटी होती है, महापले में तो सभी कुछ डूब जाता है। बोले सर्ग और महासर्ग क्यों ना हो जाए, जीव आत्मा स्वयं वही का वही रहता है, इसलिए देश काल वस्तु व्यक्ति क्रिया अवस्था परिस्थिति आदि के अभाव का अनुभव तो सबको होता है, पर स्वयं के अभाव का अनुभव कभी किसी को नहीं होता। देखो हम कहते हैं आज दाली है घर में, आज दूध नहीं आया, है ना, वो सी चीजें, आज वो व्यक्ति नहीं आया, कल सुबह ऐसा था, सब कुछ बदलता है और अभाव भी अनुभव होता है कि है नहीं का मतलब है अभाव, लेकिन अपनी आत्मा का अभाव कभी किसी को नहीं होता। ऐसा होता है कि मैं नहीं हूँ, परंतु शरीर को मैं मेरा तथा मेरे लिए मान लेने के कारण शरीर के परिवर्तन को जीव आत्मा अपना परिवर्तन मान लेता है। बदलता तो हमारा ये भौतिक शरीर है जो 5 तत्वों से बना है, जो 5 ज्ञानेंद्रियों 5 कर्मेंद्रियों मन बुद्धि चित्त अहंकार 24 तत्वों से हमारा ये शरीर बनता है। अभी आपको शायद याद नहीं होगा, पहले भी हमने इसमें मैगजीन में इसके विषय में बड़ा लंबा चौड़ा लिखा है कि 5 तत्व कौन कौन से, जल, अरे लोग पृथ्वी, जल, वायु, अग्नि, आकाश, है ना, फिर पंच तन, इसकी तन मात्राएं, ਸ਼ਬਦ ਸਪਰਸ਼ ਰੂਪ ਰਸ ਗੰਧ ਦੱਸੋਗੇ ਪੰਜ ਗਿਆਨ ਇੰਦਰੀਆਂ ਨਿਤ ਨਾਸਿਕਾ ਜੀਭਾ ਤਵਚਾ ਇਹ ਪੰਜ ਹੋ ਗਈ ਗਿਆਨ ਇੰਦਰੀਆਂ ਪੰਜ ਕਰਮ ਇੰਦਰੀਆਂ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਮੂੰਹ ਬੋਲਣ ਵਾਲਾ ਬਾਣੀ ਹੱਥ ਪਾਉਂ ਪਸਥ ਲਿੰਗ तो इस तरह से ये बन जाते हैं 24 मन बुद्धि चित्त अहंकार। तो इसके बीच में जो शक्ति बैठी है आत्मा बैठी है प्रकाश का प्रवेश है वो है आत्मा। जब वो आत्मा भगवान का रूप अंश इस शरीर में इन 24 तत्वों में घुस जाता है प्रवेश कर जाता है तो हम उसको जीवात्मा कहते हैं। और हम बार बार जन्मते हैं और मरते हैं। जैसे रेलगाड़ी पर चढ़ने से मनुष्य रेलगाड़ी के परवश हो जाता है, चढ़ गए एक दफा तो अब दिल्ली जाना है तो दिल्ली उतरना, मतलब जहाँ उसका स्टेशन आएगा वहीं हमें भी जाना पड़ेगा, जहाँ रेलगाड़ी जाएगी वहीं उसे ही जाना पड़ता है। ऐसे ही शरीर के साथ संबंध जोड़ने से मनुष्य प्रकृति के परवश हो जाता है और उसे जन्म मन के चक्कर में जाना ही पड़ता है। इसमें श्लोक है परस्तस्मातु भावो अन्यो अव्यक्तो अव्यक्ता सनातना यासा सर्वेषु भूतेषु नश्यत्सु न विनश्यति। परंतु उस अव्यक्त अव्यक्त कौन सा है ब्रह्म का सूक्ष्म शरीर से अन्य विलक्षण अनादि अत्यंत श्रेष्ठ भाव रूप जो अव्यक्त ईश्वर है वह संपूर्ण प्राणियों के नष्ट होने पर भी नष्ट नहीं होता। अब हमने पढ़ा जाना ना आज कि ब्रह्मा का दिन होता तो हम उत्पन्न हो जाते हैं, जब ब्रह्मा का रात होती है तो हम मर जाते हैं, मतलब उसमें लीन हो जाते हैं। पर ईश्वर जो है जो पूर्ण शक्ति है जो परमात्मा है वो कभी नष्ट नहीं होता। ब्रह्मा जी के सूक्ष्म से भी श्रेष्ठ कारण श्री मूल प्रकृति है और उससे भी श्रेष्ठ परमात्मा है। परमात्मा के समान भी दूसरा कोई नहीं है, फिर उनसे श्रेष्ठ कोई हो कैसे सकता है। असंख्य ब्रह्मा जी उत्पन्न होकर लीन हो गए पर परमात्मा वैसे के वैसे ही हैं। आज मैं यहाँ 20 श्लोक तक गीता के 8वें अध्याय को विराम देती हूँ। आप लोग इसे समझने का और जीवन में धारण करने का प्रयत्न कीजिएगा। अब मैं आगे स्वामी जी के कुछ भक्तों के संस्मरण जो उन्होंने स्वामी जी या महादेव तीर्थ या शारदा माँ सेवा संघ के विषय में अपने अपने विचार लिखे हैं उनको सुनाती हूँ। कल शायद हमने इनकी कोल सिस्टर कोल संतोष कौल जी का किया था ना। अब हम आगे चलते हैं गुरु की महिमा। यह चेष्टा कौल श्री गीता माँ जी तथा संघ की शारद वाणी के 50वें अंक की हार्दिक बधाई देती हूँ तथा ईश्वर से यह प्रार्थना करती हूँ कि यह पत्रिका भविष्य में भी हमारा मार्गदर्शन करती रहे। मैं बचपन से ही अपनी मासी सल्ला भान जी तथा माता पिंकी कौल जी के साथ गुरु पूर्णिमा के अवसर पर कुल्लू जाया करती थी। वहाँ का वातावरण तथा श्रीमान जी के साथ मुझे इतना अच्छा लगा कि मेरा मन हर वर्ष वहाँ जाने को करता। स्कूल की पढ़ाई करने के बाद इंजीनियरिंग की पढ़ाई करने के लिए मुझे बेंगलोर जाना पड़ा। वहाँ मैं अपने बड़े पापा के घर रहने लगी। उनके घर की एक अलमारी में मैंने कोने में छोटा सा मंदिर बना लिया जिसमें स्वामी जी की फोटो माता जी की फोटो तथा अन्य देवी देवताओं की फोटो रखकर नित्य प्रति पूजा करने लगी। पूजा करते हुए मन में ये आस भी जगने लगी कि क्या कभी कुल्लू से माता जी आएंगी और मेरा ये छोटा सा मंदिर देखेगी। रोज पूजा करते समय यही विचार मेरे मन में आता और इसी विचार के साथ मैं मंदिर में रखी स्वामी जी व माता जी की फोटो को फोटो का आशीर्वाद लेकर कॉलेज जाती। मुझे हर्ष में चाहे वह कॉलेज हो घर हो उनकी प्रेजेंस फील होती। समय यूं ही व्यतीत होने लगा। एक समय ऐसा आया कि उपरोक्त बातें सच हुई। हमने बेंगलोर में एक फ्लैट खरीदा। श्री माँ जी का हमारे यहाँ आना हुआ। उनके साथ उसमें बिमला जी, सरला जी तथा मस्त राम भी आए थे। उन्होंने मेरे छोटे से मंदिर को बड़ा बना दिया। श्री माँ जी 2 महीने हमारे साथ रही। हमारे घर में शारदा माँ सेवा संघ की नींव रखी। हर महीने सत्संग का आयोजन होता। घर का सारा वातावरण भक्ति में हो गया। इन 2 महीनों में श्री माँ जी ने हमें स्वामी जी के अनेकों प्रसंग वचन सुनाए तथा उन सद्वचनों का अनुसरण करने की प्रेरणा भी दी। मैं ईश्वर से ये प्रार्थना करती हूँ कि श्री माँ जी का आशीर्वाद बस में इतने हमारे साथ सदा बना रहे। चेष्टा को बेंगलोर। अगला है आचार्य अरविंद किशोर शास्त्री। श्रीमा गीता जी के औषाद वाणी के 50वें संस्मरण संस्करण की बधाई देता हूँ और ईश्वर से ये प्रार्थना करता हूँ कि ये पत्रिका निरंतर हमारा मार्गदर्शन करती रहे। श्री राम कृष्ण परमहंस माता शारदा स्वामी विवेकानंद एवं स्वामी विवेक जी की मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा के अवसर पर हमें इस शक्ति पीठ में वैष्णो माता मंदिर में 10 जुलाई से 15 जुलाई 2011 तक रहने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। यहाँ का वातावरण एवं त्याग मूर्ति माता जी जो सामान्य से प्रतीत होती थी, परंतु उनकी ओज में ही वाणी सुनकर मैं बहुत प्रभावित हुआ। आश्रम की छटा देखने योग्य थी। आते ही हमें आभास हो गया कि ये माता सामान्य माता नहीं है। मुझे इनमें अपनी माता भगवती महामाया का अनुभव हुआ। इनकी त्याग भावना एवं तपस्या को देखकर मुझे अंदर से आभास हुआ कि इनके चरण पूजनीय हैं। हम लोग 6 दिन तक यहाँ रहे पर बारिश नहीं हुई। शायद महामाया ने हमारे कार्य में विघ्न नहीं डाला। यज्ञ समाप्ति पर पूर्णाहुति के समय बारिश की बूंदों के रूप में योग माया ने दर्शन दिए। गीता के बारे में भी यहाँ पूर्ण हुई। अज्ञात भवंतु यज्ञात भवती पर्जन्या। अतः हमें लगता क्या है इस आश्रम में कोई अलौकिक शक्ति है। आचार्य अरविंद किशोर शास्त्री ऋषिकेश हरिद्वार। अगला है गुरु का महत्व। गुरु गोविंद दोनों खड़े काके लागू पाए। बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो मिलाए। गुरु का द्वार हमें अंधकार से प्रकाश की ओर, अज्ञानता से ज्ञान की ओर ले जाता है। गुरु नानक देव जी ने अपने बारे में कहा है कि गुरु मुख ही शब्द है, वेद है, क्योंकि ईश्वर गुरु मुख से ही में ही समाया हुआ है। गुरु ही शिव है, गुरु ही विष्णु है और गुरु ही ब्रह्मा है। मेरा अनुभव गुरुद्वार जाने का जो रहा वह मैं अपने शब्दों में लिखने की कोशिश कर रही हूँ। मनुष्य जन्म से मरण तक आज के इस भौतिक जगत में सुख के पीछे भाग रहा है। इस भौतिक सुख की प्राप्ति के लिए वह अपना सारा जीवन बिताता है। जैसे सिकंदर ने सारे राज्यों को प्राप्त कर लिया था और उसमें विश्व के 7 अजूबों में से एक माना जाता था। सिकंदर की मृत्यु के बाद जब उसकी अर्थी ले जा रहे थे तो उसके हाथ अर्थी से बाहर लटके हुए थे, क्योंकि उसने अपनी मृत्यु से पहले ही कहा था कि जब मेरी मृत्यु हो जाए तो मेरे हाथ अर्थी जीते रखना, ताकि सारी दुनिया ये देख ले कि उसके हाथ भी खाली हैं, जिसने सारी दुनिया जीतनी चाही थी, जिसने अपने हाथ में सब कुछ भर लेना चाहा था, वह हाथ भी खाली है। जैसे इंसान खाली हाथ दुनिया में आता है, वैसे ही खाली हाथ उसे जाना ही पड़ता है। चाहे वह कितना भी कुछ भी पाले, कहने का तात्पर्य है कि मनुष्य के साथ केवल उसके अच्छे कर्म ही जाते हैं, धन दौलत नहीं। अज्ञानता बस मनुष्य भौतिक सुख में ही अपना सुख ढूंढता है। वहाँ सुख उसके कष्टों का कारण बनता है, यही अज्ञानता का कारण भी है। लेकिन जो सुख प्राप्त करने का ज्ञान हमारे ऋषि मुनियों ने ग्रंथों में शास्त्रों ने हमें दिया है, उस ज्ञान को हम इस जीवन में पढ़ने और समझने में समर्थ होते हैं। इन शास्त्रों से ज्ञान प्राप्त करना संजीवनी बूटी ढूंढने के समान है। जिस प्रकार लक्ष्मण के मूर्छित होने पर हनुमान जी संजीवनी बूटी लाने गए थे, लेकिन औषधि को पहचान न होने पर पूरा पर्वत उखाड़ लाए थे। तब वैद्य जी ने संजीवनी बूटी निकाली और लक्ष्मण जी का उपचार कर उनको उनकी मूर्छा को दूर किया। उसी प्रकार गुरु भी शिष्य को ज्ञान देते उसकी अज्ञानता रूपी मूर्छा को दूर करता है। तात्पर्य ये है कि जो शास्त्र है वह पहाड़ के समान है, इसमें कौन सी बूटी कहाँ पर है इससे गुरु जी परिचित है, हम तो अज्ञानी हैं। अतः हम गुरु के शरण में जाकर इन शास्त्रों का ज्ञान गुरु से ही प्राप्त करते हैं। गुरु के एक बार दर्शन स्पर्श व नाम उच्चारण करने से तथा उसके साथ वार्तालाप करने से मनुष्य अक्षय सुख भोगता है। स्वामी सेवक दास जी का कहना है कि निष्काम सेवा ही ईश्वर की सेवा है, भगवान हर जीव में विद्यमान है। अगर आपको भगवत प्राप्ति करनी है तो जीव मात्र से प्रेम करो, जरूरतमंद को निष्काम भाव से सेवा करो, जीवों की सेवा ही ईश्वर की सेवा है। गुरु सौभाग्य से मिलते हैं, उनकी कृपा हमेशा उनके भक्तों पर होती है। मेरा जीवन धन्य हुआ जब मुझे श्री मां जी के रूप में भगवती जी प्राप्ति हुई और गुरु का प्रकाश मिला। महापुरुषों का नित्यासन करने से सब पापों का नाश होता है तथा मनुष्य अनंत सुख भोगकर गुरु के स्वरूप में लीन हो जाता है, क्योंकि वहीं पर उसको सुख रूपी संजीवनी बूटी मिलती है। दुखों और पापों का गुरु उपदेश द्वारा ही नाश होता है, इसलिए हमें गुरु की शरण में जाना चाहिए। पिंकी को बंगलोर। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। जय माता दी। गीता माँ।